ओम शांति। बाबा की मुरली सभी ने सुनी, सबसे अच्छी बात। बोलो किसको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? प्यारा बना देता है। और बोलो, मुक्ति का गेट हमें ही खोलना है। कब खुलेगा? संपूर्ण स्वरूप से। और पहने बताएं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, वो काम दिया। दिवाली पर सच्ची दिवाली मना दो। और दृढ़ता, तुम्हारे पास ताकत है हर संकल्प को पूरा करने की। पढ़ लेना फिर से पॉइंट। बाबा हम सभी को हमारी शक्तियों की याद दिलाते हैं। बड़ी सूक्ष्म और सुंदर बात है। तुम्हारे पास हर संकल्प को पूरा करने की ताकत है। तुम मन के मालिक हो। ऐसा लगता है इस बार मन की बात हर मुरली में चलेगी। थीम यही रहेगा बाबा का, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएं। और इसमें बहुत अच्छी बात और कही, मन की रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। क्या आगे? आगे क्या? तुम्हारे हाथ में है मन की रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, तुम्हारे पास है। सभी इन दोनों बातों पर अच्छा चिंतन करेंगे, स्वीकार करें इन्हें। हम मन के मालिक हैं, मेरा है मन। तो मन को कंट्रोल करने की, मन पे राज करने की पावर हमारे पास है। समझ रहे हैं? यमन हम पर राज कर रहा है, वो तो कर रहा है और 2500 साल से करता आ रहा है, इसलिए राजा वो बन गया है। हमारे पास इन पर राज करने की शक्ति है। और बहुत अच्छी बात जो पहली हमने की, सभी इस पे गहन चिंतन करना, हर संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति हमारे पास है। दो बातें थी विशेष रूप से मुरली में, एक व्यर्थ संकल्प से मुक्त और दूसरा प्रभु परिवार। उसमें क्या हो? संस्कार मिलन की रास करो। और प्रभु परिवार में क्या हो? आपस में शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम दिल, प्रभु परिवार में ये सब। और क्या हो? कोई तुमसे नाराज न हो, कोई तुमसे भारी न हो, सब हल्के हो। बाबा ने भी पूछा, संभव है? हो सकता है, क्योंकि ये बात थोड़ी कठिन है। संगठनों में, बड़े परिवार में, लौकिक परिवार में भी सब एक दूसरे से संतुष्ट रहें, ये सहज काम नहीं होता है। सबके अपने अपने विचार, अपने अपने संस्कार, अपना सोचना, एक्सपेक्टेशन, सब बहुत सारी होती हैं। तो ये दो बातें इस मुरली की विशेष हैं। एक तो सभी ये होमवर्क करेंगे कि इस मुरली से 10 सुंदर पॉइंट अलग से नोट करेंगे, और अब से और अगली मुरली तक इसको अपने पुरुषार्थ का आधार बनाएंगे। ठीक है? ऐसे नहीं मुरली सुनी, बहुत अच्छा लगा और पूरा हो गया। प्रैक्टिकल में काम करना है। अब व्यर्थ संकल्प से मुक्त बाबा हमें देखना चाहते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी क्या है? अपवित्रता है। हमें संपूर्ण पवित्र होना है, तब हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे या तब मुक्ति के गेट खोलेंगे, तो व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो। क्योंकि किसी ने भी पवित्रता धारण कर ली और उसके बाद व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? पवित्रता का तेज, पवित्रता का प्रभाव, पवित्रता की रौनक आत्मा के पास रहेगी नहीं। पवित्रता सुखदायी नहीं होगी, पवित्रता में परम आनंद है। वैसे भी मोटे रूप से सब जानते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है, परम आनंद है इसमें। परंतु अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वही शक्ति नष्ट होती रहती है। इसलिए हमें इस सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान रखना है और संस्कार मिलन की रास। अब हम दो बातें ही ले लेते हैं। संस्कार मिलन की रास का अर्थ है कहीं भी हमारा संस्कार टकराए नहीं। टकराव होता है, संगठनों में टकराव होते हैं। किस कारण से? पांच कारण निकालेंगे अब। बोलो। कारण, मैं राइट हूं। दो जो लड़ रहे हैं दोनों सोच रहे हैं मैं राइट हूं, और दोनों ही गलत हैं क्योंकि लड़ रहे हैं। ठीक बात है ना? हो सकता है दोनों राइट हों, राइट तो एक ही होगा, और दोनों ही सोच रहे हैं पर वास्तव में दोनों ही गलत हो गए क्योंकि लड़ रहे हैं। एक ये संकल्प, मैं राइट हूं। दूसरा, मनुष्य का अहम कि कोई भी झुकना नहीं चाहता। मां सोचती है बच्चों पर मेरा अधिकार है, जो मैं कहूं वे सब कुछ माने। और बच्चे क्या सोचते हैं बताओ माताओं? बच्चे क्या सोचते हैं? वो माँ बाप को बूढ़े समझते हैं, ओल्ड फैशन लोग, ओल्ड कल्चर लोग, ओल्ड विचार वाले लोग। इन्हें क्या पता आजकल दुनिया कहाँ जा रही है, इसलिए वो सुनते नहीं। वो समझते हैं हम भी राइट, और माँ बाप सोचते हैं हम भी राइट। तो जो अहम है मनुष्य का, ये टकराव का कारण है। और आगे चलो, घर घर में टकराव होता है। क्यों टकराव होता है? विचारों में मतभेद, विचार भेद। और आगे चलो, बोलो, सबको अनुभव है रोज के। वहां पुरानी दुश्मनी भी, पास्ट, पास्ट भी टकराव कराता है। कहीं ईर्ष्या द्वेष टकराव कराते। और बोलने की अच्छी आदत का न होना टकराव कराता है। तो इस पे भी बहुत ध्यान देना है। ये टकराव के बहुत सारे कारण हैं, और भी कुछ कारण होते हैं। और भी कोई बताएंगे? पुराने संस्कारों के कारण टकराव होता है। एक दूसरे से कामनाएं ज्यादा होती हैं, इच्छाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए टकराव होता है। अपनी कुछ इच्छा है, हम उसे पूर्ण करना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति उसमें बाधक बन रहा है, तो टकराव होता है। और पुरानी बातों को भुला नहीं पाते तो टकराव होता है। एक दूसरे के लिए दृष्टिकोण पहले से ही जो बना हुआ है वही बना रहता है। मुझे याद है बहुत साल पहले, पूरे 42 साल हो गए एक भट्टी हुई यहाँ, उसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर आत्मा हर दिन बदल रही है। अब 5 साल पहले का जो तुम्हारा दृष्टिकोण था वही आज भी है, वो बदल चुके हैं, वो आगे निकल गए, तुम पीछे ही हो। तो हर आत्मा बदल रही है, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो टकराव से बचने के लिए क्या करेंगे? खुद को बदलेंगे या दूसरों को? ये तो पक्की बात है सबकी कि हमें खुद को ही बदलने का दृढ़ संकल्प रखना है। इसमें भी बदलने के लिए बहुत सहज एक बात, अपने को आवश्यकता में मोल्ड कर लेना, अपने को झुका देना, छोटी बातों में डिबेट न करना। एक ने कुछ कहा, दूसरा दो बोलेगा, एक ने थोड़े गुस्से से बोला, दूसरा डबल गुस्से से बोलेगा और लड़ाई हो जाती है। होता है ना ऐसे ही? बोल हमारे सुंदर हो, रॉयल। कौन है हम सब? देव कुल की रॉयल आत्माएं। तो हमारे बोल रॉयल हो, नहीं तो बोल के कारण टकराव ज्यादा हो रहा है। और बहम शंका, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। तो इसमें क्या करें हम इससे बचने के लिए? कहीं कहीं बहम ही होता है, अनुमान ही होता है, बात होती नहीं। एक दूसरे में विश्वास रखना, ये प्रैक्टिकल चीजें हो जाएंगी। एक और बात पर ध्यान देंगे, बातों के विस्तार में न जाना। बातों को जो जितना जल्दी खत्म कर देते हैं उतना ही टकराव से मुक्त रहते हैं। और एक सबसे सुंदर बात कईयों ने अपनाई होगी अवश्य जीवन में, हम महत्व किसे देते हैं, स्थिति को या उस बात को? किसको देना चाहिए? कभी कभी मनुष्य बात को महत्व देता है तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए डिबेट हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, उससे स्थितियां बिगड़ जाती हैं। क्योंकि जब कहा सुनी होगी, जब गुस्से में कुछ बोला जाएगा तो कुछ कुछ उल्टा सुलटा बोला जाएगा और वो शब्द फिर लंबा काल याद रहते हैं। बाबा कहते थे ना, गुस्से में बोले गए शब्द 6 मास तो याद रहते ही हैं, पर कभी कभी तो किसी को जीवन भर भी याद रहते हैं। तो बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त करना, ये टकराव से बचने का तरीका है। और ये बहुत अच्छी तरह अपने को समझा देना कि सबसे ज्यादा महत्व है श्रेष्ठ स्थिति का। कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है किसी सेवा में और आप बढ़ना चाहते हैं, उससे आपकी स्थिति बिगड़ रही है, फायदा क्या होगा? मान लो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ भी जाएं, लेकिन स्थिति बिगड़ी हुई हो तो उसको आगे बढ़ना नहीं माना जाएगा। ठीक बात है या नहीं? उसको आगे बढ़ना नहीं माना जाएगा। आगे तो वही है जो स्थिति में आगे है। देखो अभी अभी हम बाबा की मुरली सुन चुके हैं 3-4 दिन पहले, विजय माला में कौन आएंगे, बहुत सुंदर मुरली थी ना। अभी नजदीक की है, कौन सी तारीख की है? 18 की है शायद, सवेरे की, 18 सवेरे की। बहुत अच्छे शब्द हैं, उस पे ध्यान दें। भगवान की क्या ओपिनियन और मनुष्यों की क्या ओपिनियन? जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र और सच्चे सच्चे सन्यासी बनेंगे वो विजय माला में आएंगे, सतयुग पर राज करेंगे। आजकल चली है ना 108 और 16,000 की बात, वो त्रेता पर राज करेंगे, वो सतयुग पर राज करेंगे। लोग पूछते रहते हैं प्रश्न। तो भगवान वाच तो ये है कि जो संपूर्ण पवित्र और सच्चे सन्यासी बनेंगे, माना संपूर्ण त्यागी, मेरा कुछ भी नहीं, सेवाओं में भी अगर मैंपन बहुत है तो सेवाएं क्या सेवाएं बोलो, फलदायी नहीं है। बाबा का ये महावाक्य हमेशा याद रखना, सबको प्रिंट कर लेना चाहिए अपने अंदर, संपूर्ण ब्राह्मण परिवार को बाबा का महावाक्य, कि चाहे कोई रात दिन सेवा में भागदौड़ करे परंतु यदि निमित्त भाव बोलो आगे निर्माण भाव निर्मल वाणी नहीं है तो, अब आगे की पॉइंट जोरदार है, तो केवल 5% ही जमा होगा। इन तीनों का सार है, यदि मैंपन है तो टकराव होगा ना। मैंपन टकराव को जन्म देता है, मैंपन दिव्यता को नष्ट कर देता है, मैंपन हमारे तेज को समाप्त कर देता है। तो 5% जमा होगा, निष्फल हुआ ना। रात दिन भागदौड़ भी कर रहे हैं, थका भी रहे हैं खुद को, लेकिन सेवा का रिजल्ट 5%। तो हम सभी सेवा को महत्व दें, उस स्थिति को महत्व दें। सेवा अगर स्थिति बिगाड़ रही हो तो वो सेवा सेवा नहीं है। बाबा ने कह दिया, बाबा ने तो साफ कह दिया था, सेवा छोड़ो खुशी न छोड़ो, सेवा छोड़ दो स्थिति न छोड़ो। तो इस तरह हम लक्ष्य बना लें, हमें किसी से टकराना नहीं है। पक्का है बोलो लक्ष्य? टकराने वाले तो आएंगे, हो सकता है बैल सामने से ही आ रहा हो मारने के लिए, हम क्या करेंगे फिर? बचेंगे या नहीं? बचेंगे ना। हमें अपने को बचाना अपने हाथ में है। टकराने वाले भी मिलेंगे जो आपके पीछे ही पड़े रहेंगे लड़ने के लिए तैयार। आप जरा सा मुंह खोलो और शुरू महाभारत। लेकिन अपने को स्वयं बचाना है, क्योंकि टकराव से स्थिति बहुत बिगड़ती है, एनर्जी सारी संकल्पों में नष्ट हो जाते। फिर कोई कितना प्रयास करे व्यर्थ संकल्प न चले, वो तो चलते ही रहेंगे। तो प्रभु परिवार में, अब ये बात बाबा की पक्की कर देंगे, हम सब क्योंकि एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए शुभ भावना। अब इसको प्रैक्टिकल रूप देंगे। क्या है इसका प्रैक्टिकल रूप? एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को आगे बढ़ते देख खुश होना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करना। ये न सोचना ये आगे बढ़ गए तो मेरा क्या होगा, यहां समस्या पैदा होती है ना। तो फिर उसको हम पीछे करने की कोशिश करते हैं और सारा श्रृंगार बिगड़ जाता है। तो बाबा ये चाहते हैं परिवार में एक का नाम हो रहा हो, आपके लौकिक परिवार में आपका एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा हो, मान लो बहुत ज्यादा कमा रहा हो, उसने नाम कर लिया हो, तो सारे परिवार का नाम होगा या नहीं? हम में से जो आत्माएं बहुत अच्छा कर रही हैं, तो संपूर्ण परिवार का नाम है। मैंने पिछली बार भी एक बात बताई होगी, यहाँ बहुत अच्छी बात है, वो सुख संवाद है, सभी इस बात पे ध्यान देंगे। मान लो किसी व्यक्ति को जीवन में बहुत सफलता मिल रही है और हम उसकी सफलता को देखकर परेशान हो रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, उसकी ग्लानी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ निगेटिव कर रहे हैं। दो ही चीज है, या तो हम उसको एप्रिशिएट करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, सीखेंगे भाई ये आत्मा आगे कैसे बढ़ी, हम भी वैसे बढ़ें, उसने जो प्रयास किया, त्याग तपस्या की, हम भी वैसा करें, या निगेटिव होगा। अब जब हम उसके लिए निगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ध्यान देंगे इस बात पर, तो हम उस व्यक्ति को नहीं सफलता का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। सफलता जो क्वालिटी है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको अपमान कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आएगी? कभी नहीं आएगी। और यदि हम उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, यदि हम उसको आगे बढ़ने में सफल होने में सहयोग दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को नहीं, हम सफलता का सम्मान कर रहे हैं, सफलता हमारी ओर खींची चली आएगी। ये एक बहुत सुंदर सिद्धांत है इस रचना का। इसलिए आप देख सकते हैं जो दूसरों के मार्ग में बैरियर्स खड़े करते हैं, विघ्न डालते हैं, वो खुद आगे बढ़ते नहीं है कभी, वो खुद बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो सफलता का अपमान कर रहे हैं, तो वो उनके पास नहीं आएगी। तो हम ध्यान दें, अपने विचारों को जरा खुला करें, अपने संस्कारों को सॉफ्ट करें, हम सरल चित्त करें। जो व्यक्ति सरल चित्त है वही सहनशील भी है, उसके पास ये टकराव की समस्या नहीं रहती है। तो सभी अपने को चेक कर लेंगे प्रैक्टिकल, ये केवल क्लास नहीं लेकिन कोई भी चीज जो हमें महसूस हो कि इसके कारण हम टकराव में आते हैं, उसको हम आज ठीक कर लेंगे। टकराने से पक्का सबको अनुभव है, कहीं ना कहीं तो हर एक टकराया ही है ना। टकराने से क्या होगा, चोट अपने को लगती है, दोनों को लगेगी। ये तो नहीं ना हमें नहीं लगेगी, उसको ही लगेगी। तो टकराना तो हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारी दिव्यता को नष्ट कर देता है। इससे हमारी सेवाओं में सफलता भी नहीं होती, बल भी नहीं बढ़ता है। व्यर्थ संकल्प, हर आत्मा इसके कहीं ना कहीं वशीभूत है और हर आत्मा इससे मुक्त होना चाहती है। सभी चाहते हैं ना, ये प्रश्न तो है ही नहीं, क्योंकि इससे मुक्त हुए बिना संपूर्णता आएगी नहीं। बाबा की मुरली में ऐसे ही एक और सुंदर महावाक्य था, सभी उसको भी अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें। व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाओ, श्रेष्ठ संकल्पों की नहीं। बहुत सुंदर सब थे। अगर तुम व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाओ तो श्रेष्ठ संकल्पों का कमाल देखना, कमाल। श्रेष्ठ संकल्पों में सचमुच बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने कभी संपूर्ण पवित्रता की ये परिभाषा दी है, केवल व्यर्थ संकल्पों से ही मुक्त नहीं, साधारण संकल्पों से भी मुक्त होना, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर योगयुक्त होना, ये संपूर्ण पवित्रता है। जिसे ये संसार, संसार की वस्तुएं, संसार के वैभव खींच छीन रहे हों, ऐसी निर्लिप्त आत्मा संपूर्ण प्योरिटी की चमक से संसार में चमकेगी। कैसी हो जाएगी वो आत्मा? वो बाबा के शब्द हैं, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। चाहते हुए भी न चाहते हुए भी सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है ना, देखने की इच्छा होती है, देखते ही रहें उसे। और चांद पूर्णिमा का हो भी लेकिन बादल हो, धुंधले बादल हों, चांद दिख भी रहा है लेकिन धुंधले बादल हैं, तो आकर्षण होगा। तो ये व्यर्थ संकल्प हैं, धुंधले बादल जो हमारी चमक को समाप्त करते हैं। तो सभी संकल्प करें अब इस मुरली से, हम सभी अपने में एक विशेष चेंज लाएंगे। सभी अपने को गहराई से देखें, जरा किस तरह के व्यर्थ संकल्प मुझे चलते हैं। आप इस पे होमवर्क करें, 2, 4, 5 भाई इस तरह के चलते हैं। मेरी नेचर बहुत सेंसिटिव है, नाजुक है, कोई कुछ कह दे तो सारा दिन व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। एक कारण, कहीं थोड़ा बहुत कामकाज में टकराव हो जाए तो व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। हमारे व्यर्थ संकल्प किस मनोविकार के कारण चलते हैं? लोभ के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण, कंपटीशन के कारण? क्या कारण है हमारे व्यर्थ संकल्पों का? मैंने एक माता की कहानी आपको सुनाई होगी। अभी भी मैं एक जगह था प्रोग्राम में, तो एक छोटा सा वीआईपी का प्रोग्राम रखा, उसमें एक बहुत अच्छी सर्जन बहन थी। तो प्रोग्राम के बाद वो मेरे से मिली कि मैं एक चीज से बहुत परेशान रहती हूँ। अभी ज्ञान में वो नहीं है, थोड़े थोड़े संपर्क में है। मैंने पूछा क्या? कहा मेरे आजकल युवक लोग बाइक बहुत तेज चलाते हैं तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। रोज एक दो केस युवकों का आएगा, बाइक टकरा दी, ये गिर गया, पैर टूटा, हड्डी टूटी, सिर टूटा। कहा जब मेरे पास ऐसे ऑपरेशन के केस आते ही रहते हैं तो मेरा लड़का भी पता नहीं कहाँ बताया पुणे में पढ़ता है तो मुझे तुरंत घबराहट होती है मेरा लड़का भी कहीं ऐसे तेज बाइक तो नहीं चलाता उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे ही पति भी दूसरे शहर में रहता है वो बड़ी पोस्ट पे उसके बारे में भी ऐसे ही कोई केस आया मेरे पति को भी तो ऐसा ना हो जाए। देखिए आप बिना कारण व्यर्थ संकल्पों का फोर्स। कहा मेरा ऑपरेशन में कंसंट्रेशन नहीं होता उदासी रहती है मेरे लड़के को नहीं ऐसा हो जाए। मैंने उसको बताया आपको किसने बताया कि उसको भी हो जाएगा या वो भी तेज चलाता है। एक माता की और कहानी कुछ समय पहले ही फोन आया माताओं की ये कहानी ज्यादा है जरा। कहा मेरे दो छोटे लड़के माता छोटी आयु की दो लड़के हैं छोटे दोनों स्कूल में जाते हैं मुझे तेज संकल्प चलता है सारा दिन उनका कोई अपहरण न कर ले और जब तक वो शाम तक आ न जाए मैं दरवाजे पर बाहर निकल के सोवार देखती हूँ पता है शाम को ही आएंगे टाइम पता है ना कब आएंगे। कहा मैं बार बार जाती हूँ आ जाते हैं तो दिल ठंडा हो जाता है। मैंने कहा आपको क्यों ये संकल्प चलता है कि अखबार में पढ़ लिया था एक बच्चे का अपहरण कर लिया तो मुझे होता है मेरे का न कर ले। अब देखो जो कारण है ही नहीं कितने व्यर्थ संकल्प भी थोड़े बहुत नहीं माना जीवन उसमें नष्ट हो गया खुशी नष्ट हो गई योग लगता नहीं है सारा दिन परेशान। तो लेकिन ये जो माता थी छोटी बहुत एकदम मैंने जो उसको बताया एकदम चेंज हो गया खेल। मैंने उसे बताया एक छोटा सा सिद्धांत याद रखना जो संकल्प तुम बार बार करोगी उसको तुम क्रिएट करोगी उसका आह्वान करोगी। अगर तुम रोज सोच रही हो मेरे बच्चों का अपहरण न हो जाए तो एक दिन अवश्य हो जाएगा। कहा ऐसी बात है क्या तो कहा मैंने पूछा क्या सोचूं फिर क्यों नहीं तुम सोचती मेरे बच्चों के साथ भगवान है वो सदा सुरक्षित है उसकी छत्र बस इतना कहना था उसकी जैसे आंखें खुली या ये बात ठीक है हमारी दीदी ने तो बताई नहीं कभी मैंने अपनी दीदी को भी पूछा था। तो देखो व्यर्थ संकल्प अनेक कारण मनुष्य के पास आजकल व्यर्थ संकल्पों के हैं हमें बचना है। मैं एक छोटी सी बात कल की बताऊं एक माता मुझे मिली हो सकता है यहां बैठी हो उसका बच्चा बेचारी का चला गया है एक साल से गुस्से में चला गया है न फोन करता इन्हें पता नहीं वो कहाँ है तो निश्चित रूप से माता तो दुखी रहेगी ना बाप भी दुखी बाप शायद है नहीं तो मेरे से पूछा क्या करूं। तो अभी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ बेंगलोर में ऐसे ही एक माता का ऐसे ही बच्चा कई साल से चला गया था गुम बिल्कुल उसे कुछ पता नहीं था वो कहाँ है मर गया जिंदा है कोई ले गया उसे कुछ पता नहीं फिर भी उसको ऐसी फीलिंग थी कि वो जिंदा है। अभी की बात है नजदीक की तो पूछा मैं क्या करूं उसके लिए तो हमने उसे उस बच्चे के आह्वान का एक तरीका सिखाया सिंपल एक घंटा रोज योग करना है 21 दिन तक और योग के बाद उसे आत्मा देखकर उसका चेहरा सामने लाके संकल्प देना कि बेटा आ जाओ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं इस स्वमान के साथ योग किया चमत्कार देखो 21 दिन योग पूरा 22वें दिन सवेरे उसका फोन आ गया मम्मी मैं ठीक ठाक हूं मैंने आपको बहुत तंग कर दिया अब मैं आता हूं आपके पास जल्दी। माता जी को नया जीवन मिल गया तुरंत मुझे फोन किया ऐसा हो गया है। तो मैंने इस माता को कल एक बात बताई कि वो तो है ही वो तो गुस्सा करके छोड़ के गया है कि इन्हें लेसन सिखाना आजकल के युवक क्या है कि माँ बाप को लेसन सिखाना चाहते हैं अब उधर माँ रो रही बेचारी वो लेसन सिखाने में लगे हुए। तो मैंने इसे कहा आप भी ऐसे ही करो और संकल्पों को शांत करो हमें ये बहुत अच्छी तरह जान लेना है संकल्प शांत होते ही संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। संकल्पों में उलझन है तो वो संकल्प जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध नहीं होगा, सफल नहीं होगा। चित्त शांत हुआ और फिर स्वमान का अभ्यास कर ले, योग का अभ्यास कर ले, तो वही बात तुम्हारे अंदर हर संकल्प को पूरा करने की ताकत है, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो सभी पांच तरह की ऐसी अपनी लिस्ट बनाएं, मुझे किस तरह के व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्पों का कारण एक नहीं, हजार। किसी को पास्ट के कारण, किसी को कल के कारण, कल भी पास्ट है पर बिल्कुल कल, किसी को 10 साल पहले के कारण, किसी को जीवन में अपमानित होना पड़ा है, किसी को जीवन में असफलता मिली है, किसी को जीवन में प्यार नहीं मिला है, इन सब के कारण व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। किसी किसी को इतने चलते हैं कि आत्मा दुखी हो जाती है उसमें। एक लिस्ट बनाएंगे पांच, उसमें भी कोई एक, पांच की लिस्ट बना के एक विशेष को अंडरलाइन करेंगे, इस कारण मुझे ज्यादा संकल्प चलते हैं, उसको ठीक करेंगे। अब ठीक करना जबरदस्ती तो नहीं, ठीक करने के लिए पहले चाहिए ज्ञान का बल, ज्ञान की कुछ ऐसी पॉइंट्स जो उन व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करें। जैसे ज्ञान की पॉइंट हुई ना उस माता का जो बच्चों का चलता था कि तुम जो बार बार सोचोगी उसका तो आह्वान हो रहा है, तुम क्रिएट कर रही हो, इसलिए क्यों नहीं ये सोचें मेरे बच्चों के सिर पर बाबा की छत्र छाया। ये ज्ञान की पॉइंट हो गई ना, तो एक ही पॉइंट से अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए, चित्त शांत हो गया। ऐसे सभी अपने पास, मैं ये बात सदा ही आपको कहता हूँ और मैं इसको करता हूँ अपने जीवन में। अभी भी ये मुरली चली तो मैं आज ही लिखनी थी मुझे इसकी मुख्य पॉइंट्स, आज मैं बिजी रहा, कल मैं इसकी 10 पॉइंट्स लिखूंगा। आप सब भी ये होमवर्क करेंगे, उसमें से 2-3 पॉइंट इतनी पावरफुल होंगी जो व्यर्थ संकल्पों को एकदम ब्रेक लगा देंगे। कुछ भी बात हो रही, हम परेशान हो रहे हैं और हमें एक संकल्प आ गया कि बाबा ने कहा ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, तो चित्त शांत हो जाएगा ना। ऐसी ज्ञान की कम से कम 10 पॉइंट हरेक अपने पास ढाल के रूप में रख लें, 10 कम से कम, ज्यादा भी हो सकती हैं। देखो मैं आपको एक बहुत सुंदर बात सुनाऊं बाबा की, आप में से किसी ने सुनी हो, मैं इसका यूज कर लेता हूं कभी कभी, आप भी करके देखेंगे। दो तरह के महावाक्य बाबा ने एक ही बात के बारे में बोले। यदि तुम साक्षीपन की सीट पर बैठे रहो तो इस सीट के नीचे दबकर सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरा ऐसा ही महावाक, यदि तुम अचल डोल स्थिति की सीट पर सेट रहो तो सभी समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। एक्सपेरिमेंट करने का संकल्प भी है बहुत सुंदर, कि अगर हम साक्षी होकर रहे, अगर साक्षीपन की सीट पर, तब बाबा ने बोला था सिंहासन, साक्षीपन के सिंहासन पर बैठे रहो तो सभी समस्याएं इस सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। और दूसरी बात थी, यदि अचल अटोल अवस्था की सीट पर बैठे रहो तो सभी समस्याएं सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। अब हम बहुत परेशान हो तो और संकल्प चलते रहेंगे, परिस्थिति बिगड़ती जाएंगी, या अपने को साक्षी कर दें, अचल अडोल कर दें, नो थॉट, और समस्याएं खत्म कर लें। ये हमें सोचना है, इसके प्रयोग करने हैं। तो हरेक अपने जिस तरह के भी संकल्प चलते हैं, मोह के कारण बहुत संकल्प चलते हैं। विनाश काल में सबसे खतरनाक जो मनुष्य के लिए होगा मोह, जो आत्माओं को दुखी कर डालेगा। ब्रेन पर ऐसा बुरा इफेक्ट आएगा कि सभी लोग जिंदे रहते भी जिंदे नहीं रहेंगे। मोह बहुत कष्ट देगा। उसके जो संकल्प चलते हैं उनको समाप्त करने का ज्ञान का कोई पॉइंट। और दूसरी पॉइंट सबसे ज्यादा जो मदद करती है स्वमान। और तीसरी चीज अपना योग अभ्यास, ताकि हमारे मन में इतना बल हो कि वो खाली न रहे। हम ये बहुत अच्छी तरह ख्याल में ले आए कि मन खाली है तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा हैं। मन खुशी में और आनंद में नहीं है तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा हैं। इसलिए बाबा ने कहा मन को इतना बिजी कर दो, कहा ना इसी मूल्य में, तो व्यर्थ को मार्जिन न मिले। लेकिन किस में बिजी? कोई कंप्यूटर पे बिजी कर दे, कोई टीवी देखने में बिजी कर दे, कोई कामकाज में बिजी कर दे, वो नहीं, उससे तो एनर्जी खत्म होती जाएगी। एक सुंदर टाइम टेबल बनाएं अपने पुरुषार्थ का, योग की एक्सरसाइज में मन को बिजी करें। ये सबको खुद करना है। मैंने आज ही बनाया अपना एक नया टाइम टेबल, बड़ा मजा आया मुझे, बहुत आनंद आता है उसमें। तो चाहे हम कुछ भी काम करें, कहीं भी बिजी रहें, वो अभ्यास हमारा चलता रहेगा। जैसे भाई 8 से 9 मुरली के बाद मुझे ये करना है, तो मैंने वो 10 बार किया एक घंटे में। मुरली के समय 7 से 8 मुझे ये करना है, वो किया। ऐसे ही सारे दिन का बनाया तो बहुत ही अच्छी फीलिंग एक ही दिन में होने लगी। ये पुरुषार्थ का सबसे सुंदर तरीका है जो बाबा हमेशा बताते हैं। इससे व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा, और केवल व्यर्थ खत्म नहीं होगा, मन आनंदित स्थिति में रहेगा। तो इन सभी विधियों से हम व्यर्थ को लगाम लगाएंगे, श्रीमत की लगाम। ये सब श्रीमत है ना, टाइट करो, प्रोग्राम बनाओ अपना अपना। और लास्ट बात जो हम बहुत ध्यान में लाएंगे, हम अपने अंदर ये फीलिंग भरते चले, हे मन मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हें मेरी इच्छा के विरुद्ध कहीं नहीं जाना है। बाबा ने बताया जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, फॉलो फादर करो। मन को इस तरह से साध देंगे, साधेंगे, उसको एक डायरेक्शन देंगे। और ये बिल्कुल अच्छी तरह समझते जाएं कि मन हमारे डायरेक्शन को स्वीकार करेगा। और मन जिनके डायरेक्शन को स्वीकार करने लगे उनको ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त हो जाएगी। कैसी? प्रकृति, जीव जंतु सभी हमारे डायरेक्शंस को स्वीकार करेंगे। मैंने एक छोटा सा देखा उस दिन, सुदामा और श्री कृष्ण का आ रहा था, किसने मुझे फोन किया तो बहुत अच्छा आ रहा है तुम भी देख लो। तो मैंने देखा तो क्या दिखाया कि सुदामा और श्री कृष्ण जंगल में गए हुए हैं, शेर आ रहा है। सुदामा डर के पीछे हो जाता है, श्री कृष्ण पूछता है तुम डरते हो? कहा डरता तो नहीं, बच्चे जैसे करते हैं, डरता थोड़ा ही हूं, लेकिन शेर आ रहा है और सामने आ गया। तो श्री कृष्ण आगे है, सुदामा पीछे है। श्री कृष्ण ने उससे बातें की, हे वनराज देखो ये मेरा मित्र सुदामा है, इसको तुम खा लोगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, मुझे तुम खा नहीं सकते। बात कर रहा उससे, उस पर दृष्टि डाली हुई है। इसलिए कुछ और बात भी की और कहा तुम जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से वापिस चले जाओ। मैं इसको ध्यान से देख रहा था और शेर रुका, जब आई ली थोड़ा इधर उधर देखा और वापस मुड़ के चल दिया। तो मैं देख रहा था कि श्री कृष्ण के आदेश को शेर, प्रकृति, अग्नि, जल सब स्वीकार कर रहे हैं। वहां तो लोग ये जानते हैं कि वो भगवान है इसलिए स्वीकार कर रहे हैं, परंतु ये हम योगियों की एक स्थिति है जो स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। मन को अपने डायरेक्शन में चलाने लगेंगे। प्रकृति और जीव जंतु सभी उनके डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, मानेंगे। तो बहुत बड़ी स्थिति है हमारे पास है, इसलिए रोज कई कई बार अपने मन को याद दिलाओ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें मेरी इच्छा के विरुद्ध कहीं नहीं जाना है। बहुत भटक के देख लिया, काम के पीछे, अहंकार के पीछे, वैभवों के पीछे, सांसारिक प्राप्तियों के पीछे बहुत भटक कर देख लिया तुमने। अब स्थिर हो जाओ, अब ईश्वरीय सुख प्राप्त करो। एक बार कम से कम रोज ऐसे बाबा से अपने मन से बातें किया करेंगे। पसंद है तो मन को कंट्रोल होगा, मन कंट्रोलिंग पावर हमारी काम करेगी। ये सब चीजें आप नोट भी कर लेंगे, हमारे पास मन को कंट्रोल करने की, उस पर रूल करने की पावर है, राजा हम हैं। और हर संकल्प को पूरा करने की ताकत हमारे पास है, और व्यर्थ से मुक्त होकर श्रेष्ठ संकल्पों की कमाल देखो। ये तीनों बात इस मुरली से बहुत प्रेरक हैं हमारे लिए, इस पर सभी ध्यान देंगे और प्रैक्टिकल होमवर्क करेंगे अगली मुरली आने तक। पसंद है, सभी होमवर्क करेंगे, पांच बातें निकालेंगे, उनमें से एक पर बिल्कुल अच्छा वर्क, कि उस तरह के संकल्प हमें चलने नहीं देने हैं। एक और बात लास्ट कह दूं, कुछ ऐसे संकल्प हैं जो एक ही चीज से समाप्त हो जाते हैं, कि उन चीजों को जो मन में चल रही हैं, बाधाएं, बोझ, समस्याएं, बाबा पर अर्पित कर दो, तो बहुत सारी चीजें शांत हो जाएंगी। इसलिए अपने पुरुषार्थ में सभी को समर्पण भाव भी बहुत बढ़ाना है, और इसकी आदत आप डालें, पानी पिएं, पहले बाबा को समर्पित करें, भोजन खाएं, बाबा को समर्पित करें, जो कुछ खाएं पिएं, बाबा को समर्पित करें, तो फिर मन के बोझ भी समर्पित करने की आदत पड़ जाएगी। तो इस मुरली को हम अगले 20-25 दिन है हमारे पास, 25 दिनों के लिए अपने पुरुषार्थ का आधार बनाएंगे, और हर 2-3 दिन के बाद इस पर एक नजर डालते रहना। सारी मुरली न भी, जैसे मैंने कहा, इसकी 10 पॉइंट लिख लो जो आपको पसंद हो, 8 लिख लो, 5 लिख लो कम से कम, और उनको पढ़ते रहेंगे तो मुरली का प्रभाव रहेगा। ओम शांति।